हरे कृष्ण। भगवान राम की कथा को प्रारंभ कर रहे हैं तो पहले प्रणाम करेंगे, आप सब दोहराइए,
रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः।
हम प्रणाम करते हैं भगवान श्री राम और श्रीमती सीता देवी को, भगवान के भाई लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न को, भगवान के परम मित्र श्री सुग्रीव और श्री रामचंद्र जी के परम भक्त वायु पुत्र हनुमान जी को बारंबार प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी बड़ी संख्या में आप कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। भगवान राम की कथा जो पिछले कुछ दिनों से हम लोग कर रहे हैं रामनवमी के अवसर पर, अब तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह भगवान राम एक मृग के पीछे भागे, कैसे एक सोने का मृग, एक धोखे का मृग बना और फिर उसके पीछे भागे, और किस तरह मारीच ने धोखे से भगवान की आवाज में लक्ष्मण को पुकारा, और कैसे फिर आगे चलकर सीता देवी का हरण हुआ। इतनी कथा हम लोग सुन चुके हैं, और अब भगवान, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे शबरी की, तो ये चर्चा भी हो चुकी है। वैसे इस कथा को आगे बढ़ाने से पहले हम स्वागत करना चाहते हैं आदिकेश्वर प्रभु और प्रेम लीला माता जी का। बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, हमारे बीच में हैं, यहाँ पर बंबई से आए हैं, वैसे उडुपी में रहते हैं आजकल। बंबई में हमारा एक, हमारी संस्था के द्वारा एक अस्पताल खोला हुआ है, भक्ति वेदांत अस्पताल, तो उसमें काफी वर्षों से प्रभु जी वहां पर सेवा में थे, और वैसे वो स्किन स्पेशलिस्ट हैं। प्रभुपाद भी समझाया करते थे इस बात को कि हमें, वैसे वो कहते हैं स्किन स्पेशलिस्ट नहीं होना चाहिए था लेकिन वो दूसरे सेंस में, मतलब हमें शरीर के प्रति ज्यादा आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो वो हमारे बीच में हैं, हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। पहली बार कारवार आए हैं और इस अवसर पर, रामनवमी के अवसर पर आए हैं, व्यस्त रहते केवल दो दिन का समय निकाल कर आए हैं यहाँ पर, तो इसलिए उनका स्वागत करने के लिए तीन बार जोर से हरि बोल कहेंगे। हरि बोल। और भगवान का प्रसाद
ये प्रभु जी को दे देंगे, और माता जी को बोलेंगे माता जी को डाल देंगे, आपकी वाइफ को बोले माता जी को डाल, प्रभु जी को ये प्रभु जी को आज डाल दीजिए, माता जी को भी उनको डाल।
हाँ, वो ढूंढ रहे, वो बैठे सामने प्रभु जी कंफ्यूज हो गए थोड़ा, होगी किसको हार डालना है। तो आदिकेश्वर प्रभु यहाँ पर है और इस्कॉन कारवार में उनका स्वागत करेंगे। एक बार और जोर से हरि बोल गाएंगे।
हरि बोल।
थैंक यू प्रभु। वैसे वो बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, हमें उनके सामने बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उनका आदेश है इसलिए पालन कर रहे हैं। कल हम लोग शबरी के विषय में सुन रहे थे, रावण के विषय में सुना। कल चर्चा थी कि रावण बहुत प्रसन्न हो गया जब उसने सीता देवी का हरण कर लिया। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इस भौतिक जगत में जब व्यक्ति किसी सफलता को प्राप्त करता है तो उसका अहंकार बढ़ता है, लेकिन वही आध्यात्मिक जगत में जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो वो नम्र हो जाता है। ये अंतर है भौतिक जगत की सफलता और आध्यात्मिक जगत की सफलता का। रावण सोच रहा था वो सफल हो गया, अहंकारी हो गया, लेकिन दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जब उनको सफलता मिली और कितनी सफलता मिली, लेकिन उनके अंदर कोई अहंकार नहीं था। वो अपने आप को अपने ही शिष्यों का दास मानते थे। तो इसीलिए ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में अंतर है। साथ ही साथ हमने शबरी की कथा से सीखा कि कैसे धैर्य बनाए रखना चाहिए। भक्ति में धैर्य बनाए रखना बहुत आवश्यक है, श्रद्धा को रखना बहुत आवश्यक है, उत्साह को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। शबरी के कैसे उत्साह था, शबरी का उत्साह खत्म नहीं हुआ। श्री रामचंद्र जी आए नहीं, उनके गुरु तो कहकर चले गए थे कि एक दिन आएंगे, और शबरी रोज फलों को तोड़कर, फूलों को तोड़कर, फूल बिछाकर, साफ सुथरा आश्रम रखकर दिन भर इंतजार कर रही है, रामचंद्र जी नहीं आते। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, छोड़ दो शबरी, वो नहीं आएंगे। अरे तुमसे मिलने, तुम कौन हो, कोई बहुत बड़ी भक्त हो भगवान की, क्यों आएंगे तुमसे मिलने। लेकिन शबरी को अपने गुरु के शब्दों पर विश्वास था, शबरी का उत्साह था और धैर्य था। ये चीजें चाहिए हमें भक्ति में प्रगति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। धैर्य होना चाहिए, एक दिन भगवान आएंगे। गुरु के शब्दों में विश्वास होना चाहिए, जब गुरु कहें जब करो, जब करने से भगवान प्राप्त होंगे, विश्वास से जब करेंगे निश्चित भगवान प्राप्त होंगे। ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने कहा, बस इस मंत्र का जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तुम्हें भगवान प्राप्त होंगे। ध्रुव ने पूरी श्रद्धा से उसको किया, भगवान उसके सामने प्रकट हुए। इसीलिए भक्ति में धैर्य चाहिए, उत्साह चाहिए और गुरु के शब्दों में पूर्ण विश्वास चाहिए। शबरी के उदाहरण से हमने ये सीखा। लेकिन रावण तो अहंकारी हो गया, और ये जो अहंकार होता है ये केवल नाश का कारण बनता है। भगवत गीता में भगवान बताते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु पचायते, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। भगवान कहते हैं प्रारंभ होता है ध्यायतो, और इस श्लोक को अगर हम पूरा समझना चाहते हैं, ये जो भगवान ने श्लोक कहे ध्यायतो विषयान से लेकर विनाश्यति तक, अगर इस श्लोक को समझना चाहते हैं तो रावण के जीवन को देख लेना चाहिए। हर एक लाइन रावण के जीवन पर है। ध्यायतो विषयान पुंसा, जब शूर्पनखा ने आकर बताया रावण को, तो ध्यान प्रारंभ हो गया रावण का, सीता का हरण करना है। संगस्ते शुपजायते, बहुत आसक्ति बढ़ गई। संगात संजायते कामः, काम इतना तीव्र हो गया। मारीच ने समझाया, रावण तुम किसके साथ युद्ध करने जा रहे, मारे जाओगे, जीत नहीं पाओगे रामचंद्र जी से। मैंने देखी है उनकी शक्ति, दो बार मैंने उनकी शक्ति देखी है, बच गया हूं मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं, नहीं करो। काम संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते, बहुत क्रोध आ गया रावण को, कैसे ये कह रहा है। और रावण ने मारीच को कहा कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। क्रोध संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, भूल गया वो क्या करने जा रहा है, कितना बड़ा पाप, कितना बड़ा अपराध करने जा रहा है, अपनी ही मृत्यु का कारण अपने ही हाथों से खींच कर ले जा रहा है। स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, उसकी बुद्धि नहीं रही, क्या करना चाहिए क्या नहीं, विवेक नहीं रहा। बुद्धि का अर्थ होता है विवेक। बुद्धि का अर्थ ये नहीं होता है हम बड़े बड़े एटम बम बना लें, ये बुद्धि नहीं है। बुद्धि का अर्थ ये नहीं होता है कि हम कोई बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा लें, ये भी बुद्धि नहीं है। बुद्धि का अर्थ क्या है, विवेक, क्या सही है और क्या गलत है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं जो असुर होते हैं वे जानते नहीं है कि सही क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जनानाम विदुरासुरा, तुमको पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसीलिए बुद्धि का अर्थ है विवेक। तो खैर, रावण अपनी बुद्धि को भूल चुका था और अब शबरी से मिलकर शबरी का उद्धार किया भगवान श्री राम ने। कल हमने चर्चा की थी कि श्री रामचंद्र जी ने 9 चीजें बताई शबरी को, मुझे प्राप्त करना चाहते हो शबरी तो इन 9 अंगों का पालन करो। भक्ति के 9 अंग श्री रामचंद्र जी ने बताए, जिनमें सबसे पहला था भक्तों का संग। और हमने कल सुना कि कैसे रामचंद्र जी ने भक्तों का संग, गुरु की सेवा, हमेशा भक्तों की सेवा, इस सब पर बहुत जोर दिया, ये उपदेश दिए शबरी को। और फिर शबरी ने अंत में भी अपने गुरु को ही मांगा भगवान से। शबरी ने यही कहा कि मैं वहां जाना चाहती हूं जहां मेरे गुरु हैं, मैं उनकी सेवा करना चाहती हूं। शबरी ने भगवान को नहीं मांगा, शबरी ने धाम नहीं मांगा, शबरी ने गुरु की सेवा मांगी। ये शबरी की महानता। तो खैर, शबरी से फिर मिलने के बाद अब श्री रामचंद्र जी आगे चले। अब बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग प्रारंभ हो रहा, किष्किंधा कांड खत्म हो गया है, अब प्रारंभ हो, समा कीजिए, अरण्य कांड खत्म हो गया, अब किष्किंधा कांड प्रारंभ हो रहा। किष्किंधा जो नगरी है सुग्रीव और वाली की, और यहां से न केवल एक किष्किंधा कांड प्रारंभ हो रहा है, एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश भगवान दे रहे हैं, मित्रता का संदेश। हम लोग देखते हैं कि इस जगत में हम सभी मित्र चाहते हैं। कोई कह सकता है मुझे अकेला अच्छा लगता है, लेकिन थोड़े समय के लिए मित्रता चाहिए। भगवान राम अब सुग्रीव से मित्रता करने जा रहे हैं और क्या दिखलाने जा रहे हैं कि इस जगत में अगर कोई सच्चा मित्र है तो वो केवल भगवान है। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम। अगर ये जान लो कि मैं ही सबका सुहृद हूं, मैं ही सबका मित्र हूं, शांति मिल सकती है। भगवान राम चले, पंपा सरोवर पहुंचे, बहुत सुंदर स्थान था पंपा सरोवर का, देखकर सीता देवी का स्मरण आ गया। श्री रामचंद्र अब विलाप करने लगे, सीता देवी का स्मरण करने लगे और बारंबार लक्ष्मण से कहने लगे कि बहुत स्मरण आ रहा है, पता नहीं कैसी होगी सीता। और जब लक्ष्मण ने ऐसे विलाप करते हुए देखा, लक्ष्मण सहन नहीं कर पाए अपने भाई को श्री रामचंद्र जी को ऐसे विलाप करते देखकर, और लक्ष्मण ने कहा ये विलाप मत कीजिए, रावण जहां भी होगा मैं उसको मार डालूंगा, आप चिंता मत कीजिए। अगर रावण पाताल में भी घुस गया, और पाताल ही नहीं, वो श्री रामचंद्र जी से कहते हैं अगर वो जाकर दीति के गर्भ में भी घुस जाए, दीति ये दैत्यों की माता है, उनसे दैत्य उत्पन्न होते हैं, तो अगर अपनी माता के गर्भ में भी घुस जाए, अर्थात सारे दैत्य उनसे आते हैं इसलिए उनको दैत्यों की माता कहा जाता है, लक्ष्मण कहते हैं दीति के गर्भ में भी घुस जाए वहां भी जाकर उसको मैं मारूंगा, आप चिंता नहीं कीजिए, रावण का वध तो होगा ही। लक्ष्मण उनको, तो ऐसे जब वो बात कर रहे थे सुग्रीव वहां से गुजर रहे थे और सुग्रीव ने देखा और सुग्रीव घबरा गए, ये तो वाली ने भेजे। और क्योंकि उनको देखकर ही लग रहा था, राम लक्ष्मण को देखकर लगता था कि बड़े शक्तिशाली हैं, दिव्य पुरुष हैं, बड़े घबरा गए सुग्रीव और भागे वहां से, गए ऋषिमुख पर्वत पर, सबको कहने लगे चलो हमें कुछ करना है, छुप कर रहना है, वाली यहां पर भी हमें रहने नहीं दे रहा है। फिर सब बातचीत होते हुए हनुमान जी से बात हुई, हनुमान जी ने समझाया सुग्रीव आप महाराज हैं, आप राजा हैं, ऐसे आपको विचलित नहीं होना चाहिए, हर स्थिति में सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ, जैसे मानो सुग्रीव हनुमान जी को कह रहे ठीक है तुम्हारे अंदर बड़ी बुद्धि है ना, तुम जाओ जाओ पता करके आओ कौन है ये दो, और अगर पता चले कि ये वाली ने भेजे हैं तो तुरंत आके बताना, हम लोग एकदम आश्रम में चले जाएंगे, नहीं तो कहीं और चले जाएंगे। हनुमान जी ने कहा ठीक है। तो हनुमान जी जा रहे हैं, अब हनुमान जी दूत हैं सुग्रीव के और वो मित्रता कराने जा रहे हैं। हनुमान जी आए, उन्होंने अपना वेश बदल लिया, कहीं पर कहा एक ब्राह्मण का वेश कर लिया, कहीं लिखा है ब्रह्मचारी का वेश कर लिया, कहीं लिखा है भिक्षुक का वेश कर लिया, लेकिन तीनों एक ही हैं, ब्रह्मचारी भिक्षुक ब्राह्मण एक ही को कहा जा। तो हनुमान जी आए, अपने वेश को छुपा लिया श्री रामचंद्र जी के सामने और आकर उन्होंने बहुत सुंदर बात कही और उन्होंने बड़ी मधुर वाणी में पूछा आप लोग कौन हैं, यहां इस तरह घूम रहे हैं, आपको देखकर तो लगता है कि आप दिव्य पुरुष हैं, मुझे तो लगता है आप ही नर और नारायण हैं, तो आप हैं कौन ये बताइए। तो बहुत कुछ कहा हनुमान जी ने, तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि देखो लक्ष्मण, ये जो हनुमान है, उन्होंने अपना परिचय भी दिया, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तो कितना वेदों का ज्ञाता है, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो ठीक है इसको परिचय देते हैं। तो उन्होंने अपना परिचय दिया और आप सोचिए हनुमान जी के लिए तो श्री रामचंद्र उनके नित्य स्वामी हैं। जैसे ही उन्होंने सुना रामचंद्र लक्ष्मण, तुरंत दंडवत प्रणाम किया हनुमान जी ने, हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर हनुमान जी कहने लगे श्री रामचंद्र जी से ऐसा कैसे हुआ, मैं तो मूर्ख हूं, मैं तो मनुष्य भी नहीं हूं, मैं तो एक पशु हूं और इसीलिए मैं भूल गया, आपको पहचान नहीं पाया, लेकिन आप तो स्वामी हैं, आपने मुझे कैसे नहीं पहचाना। ये हनुमान जी का भाव था। हनुमान जी को बहुत दुख हुआ कि शायद मुझसे कोई अपराध हो गया होगा, नहीं तो मेरे स्वामी मुझे पहचान नहीं पाए, अरे मैं तो मूर्ख वानर हूं, नीच जाति का हूं, मैं अपने स्वामी को भूल सकता हूं लेकिन स्वामी कैसे भूल गए मुझे, प्रश्न किया उन्होंने हाथ जोड़कर रामचंद्र जी से। यहां एक बहुत सुंदर बात रामचंद्र जी ने सिखलाई, हम भगवान को प्राप्त करना है तो हमें प्रामाणिकता चाहिए। अगर हम भगवान को धोखा देने का प्रयास करते हैं तो भगवान की कृपा नहीं आती। ये प्रामाणिकता है भक्ति में जो हमें भगवान की कृपा पहुंचाती है। ऑनेस्टी ब्रिंग्स मर्सी। इसीलिए हमें कभी भगवान को धोखा देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और आप सब अपने अपने हृदय में झांक कर देखिए, क्या कभी ऐसा समय नहीं था आपके जीवन में, या आज भी क्या ऐसा समय नहीं है जब आप भगवान को धोखा देते हैं। हम लोग सब प्रयास करते हैं, कभी कोई गलत काम कर रहे हैं हम सोचते हैं भगवान नहीं देख रहे हैं, कभी कुछ और करते हैं हम सोचते हैं मैंने जो किया किसी को नहीं पता, हम बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर सामने सबके बैठ जाते हैं, भगवान को धोखा देने का प्रयास करते हैं। इस जगत में अगर हमें धोखा देना है, वैसे हम किसी को धोखा नहीं दे सकते, हम तो ये सोचते हैं कि हमने उस व्यक्ति को धोखा दे दिया, इसको दे दिया, दरअसल हम अपने आप को धोखा देते हैं, और भगवान को कौन धोखा दे सकता है। इसीलिए हनुमान जी की इस लीला के द्वारा श्री रामचंद्र ये सिखला रहे थे कि मेरी कृपा चाहिए, प्रामाणिकता होनी चाहिए, ये धोखा देने की भावना से बाहर आना चाहिए। बचपन से हम लोग धोखा देते आए हैं, आदत पड़ गई है हमें धोखे की, और अब हम भगवान को धोखा देना चाहते हैं, हम भक्ति नहीं करना चाहते, दिखावा करना चाहते हैं, हम ये दिखलाना चाहते हैं भगवान को कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं बहुत बड़ा गुरु हूं, मेरे बहुत अनुयायी हैं, धोखा दे रहे हैं। भगवान हृदय जानते हैं, क्या है हमारे हृदय में, क्या आप भक्ति भगवान को पाने के लिए कर रहे हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, या इस जगत में कोई पद पाने के लिए कर रहे हैं, भगवान हृदय जानते हैं। इसलिए भगवान को धोखा देने का प्रयास नहीं करना चाहिए, भगवान के सामने हमें नतमस्तक होकर अपने हृदय को खोल देना चाहिए, भगवान को बताना चाहिए ये है मेरे हृदय में, और भगवान उसको चोरी करेंगे, अनेक जन्मार जित पाप चोरम, भगवान के लिए कहा गया है कि भगवान इतने बड़े चोर हैं कि अनेक जन्मों से आपने जो पापों को अर्जित करके रखा है भगवान उसको चुरा सकते हैं। इसलिए ऐसे कार्य हमें करने चाहिए, खोल दीजिए अपना हृदय भगवान के सामने, बताइए क्या है हमारे हृदय में। मैं अहंकार चाहता हूं, मैं पद चाहता हूं, मैं बहुत मान सम्मान चाहता हूं, या मैं आपको चाहता हूं। जिस दिन हमारे हृदय में केवल भगवान को पाने की प्राप्त इच्छा होगी, केवल उनको प्राप्त करने की इच्छा, तब भगवान मिलेंगे। कभी कभी लोग कहते भगवान मिलने बहुत कठिन है, बड़ी तपस्या करनी है, हिमालय में जाना है, कोई आवश्यकता नहीं है। स्थाने स्थित श्रुति गताम तनुवाक मनोभी, भागवत कहता है, स्थाने स्थित, आप जहां हैं, परिवार में हैं, घर में हैं, जहां हैं वहां रहिए। स्थाने स्थित श्रुति गताम, सुनिए और सेवा कीजिए। तनुवाक मनोभी, तन से, वाचा से, मन से भगवान को प्रणाम कीजिए। आपके तन को सेवा में लगाइए भगवान के मंदिर में, आपकी वाचा को भगवान के गुणगान में लगाइए, आपके मन में भगवान का स्मरण कीजिए, जीवन शुद्ध हो जाएगा। हमारे स्मरण क्या होते हैं? इस जगत का स्मरण, धन कमाने का स्मरण, भोग करने का स्मरण, छोड़िए उसको, कृष्ण का स्मरण, राम का स्मरण, हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन भगवान यही दिखला रहे थे। तो फिर हनुमान जी ने कहा कि यहीं पर्वत पर, ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव हैं, और आपको उनसे मित्रता करनी चाहिए, उनको भी आपकी आवश्यकता है। हनुमान जी को बता दिया था श्री रामचंद्र ने कि सीता देवी का हरण हो गया है। हनुमान जी ने कहा वो ढूंढ देंगे सुग्रीव, उनके पास इतने वानर होंगे कि वो सारे वानरों को सब जगह भेजकर ढूंढ लेंगे सीता देवी को, आप चिंता मत कीजिए। तो फिर हनुमान जी ने अपने आकार को बहुत बड़ा कर लिया और दोनों कंधों पर, एक तरफ रामचंद्र जी को, एक तरफ लक्ष्मण जी को बिठा, एक छलांग मारी, ऋषिमुख पर्वत पर ऊपर पहुंच गए। वैसे ये स्थान आज भी है। आप में से कुछ लोग हमारे साथ, जब हम लोग हम्पी गए थे तो हम लोग ऋषिमुख पर्वत पर गए थे, जहां अंदर जाकर गुफा में हम लोगों ने राम नाम का कीर्तन किया था। फिर हम पंपा सरोवर भी गए थे। तो ऋषिमुख पर्वत पर अब भगवान पहुंचे। सुग्रीव को हनुमान जी ने बताया उनकी पहचान। सुग्रीव ने जैसे ही सुना, सुग्रीव ने आकर प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया भगवान को, और फिर भगवान ने उनको अपने गले से लगाया। मित्रता का भाव, अग्नि जलाई गई, अग्नि के समक्ष वचन लिए गए। सुग्रीव ने वचन लिया कि मैं सीता देवी की खोज में आपकी मदद करूंगा। श्री रामचंद्र ने वचन लिया कि तुम्हें राज्य दिलाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मित्रता की चर्चा हो रही थी। अगर हमें मित्रता करनी है, मित्रता के कई उदाहरण दिए जाते हैं इस समाज में। जब मित्रता की बात आती है तो अर्जुन और कृष्ण की मित्रता, कृष्ण और सुदामा की मित्रता, भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता, और कई लोग कर्ण की भी मित्रता की बात कर देते हैं। मित्रता क्या है? सच्चा मित्र कौन है? दो तरह की मित्रता इस जगत में हो सकती है, एक सच्ची मित्रता और एक दिखावे की मित्रता। दिखावे की मित्रता क्या है? एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। एक जंगल में ऊंट का विवाह हो रहा था। ऊंट समझते हैं ना आप लोग? कैमल तो इंग्लिश में बोलते हैं, यहां की भाषा में क्या बोलते हैं? कन्नड़ में वंटे, ओके वंटे। ऊंट का विवाह हो रहा था तो सब लोग उपहार लेकर जा रहे थे, सारे जो वहां प्राणी थे। अब गधा भी जा रहा था, लेकिन गधे के पास कुछ था नहीं देने के लिए। अब गधा तो गधा है, इसीलिए उसको गधा कहा जाता है। तो वो कुछ उपहार नहीं था जाए देने के लिए, तो उसने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि ऊंट को बड़ा अच्छा लगे। तो उसने जाकर ऊंट के रूप का गुणगान करने लगा, अहो रूपम महो रूपम, कहने लगा आपका रूप। अब ऊंट का कोई रूप सुंदर होता है? बताइए, देखा आपने ऊंट को? ऊंट को देख के कोई कहता है अरे अरे कितना सुंदर है? तो कहने लगा अहो रूपम महो रूपम, क्या रूप है आपका, क्या सुंदर दिख रहे। अब ऊंट ने भी सोचा कि गधा इतना कर रहा है तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो ऊंट ने कहा, अहो ध्वनि, अरे क्या आवाज है आपकी, क्या अब गधे की क्या आवाज होती है आप सब जानते हो, जब रेंगता है तो डंडा मारने का मन करता है। ये मित्रता एक तरह की इस जगत की मित्रता है कि केवल किसी चीज पर आधारित, सच्ची मित्रता नहीं है। ये केवल एक दिखावा है इस जगत में, क्योंकि सच्ची मित्रता हो ही नहीं सकती। अगर हम भगवान को त्याग देते हैं तो फिर कैसे हम लोग सच्ची मित्रता कर सकते हैं। इस जगत के हमारे जितने भी संबंध हैं, जितने भी मित्र हैं, बंधु बांधव हैं, ये जान लीजिए कि आपके उस समय काम नहीं आएंगे जिस समय आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। कर्ण को एक श्राप था, तुम्हें बहुत कुछ है, शक्ति है, सब है, तुम्हें ज्ञान है अस्त्र शस्त्रों का, लेकिन जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी भूल जाओगे, काम नहीं आएंगे तुम्हारे। हम सबको भी यही श्राप है कि जो भी हमारे बंधु बांधव हैं, हमारे जितने चीज जो हम कहते कि ये मेरा जीवन है, ये मेरे जीवन की कमाई है, अगर आप अपने जीवन के अचीवमेंट्स, जीवन के कुछ दिखाना चाहते तो क्या दिखाते हैं, अपना परिवार, अपना समाज, अपना राष्ट्र इत्यादि, ये मेरे अचीवमेंट्स हैं, काम नहीं आएंगे जिस समय सबसे ज्यादा जरूरत होगी। प्रभुपाद समझाया करते थे एक बहुत सुंदर उदाहरण से कि जो एक पायलट होता है उसको नीचे बहुत ट्रेन किया जाता है, कई दूसरे पायलट उसको ट्रेन करते हैं कहां बटन दबाना है, कैसे करना है, कैसे उड़ाना है प्लेन, लेकिन जब वो ऊपर उड़ाता है प्लेन तो वो अकेला होता है, वहां उसको कोई सिखाने वाला नहीं होता। इसी तरह प्रभुपाद बताया करते थे कि हम सबको अपना प्लेन खुद उड़ाना है। कोई मदद शुरुआत में करेंगे, लेकिन वो जब समय आता है जब देह छोड़ने का, जब ये शरीर हमें कष्ट देने लगता है, शरीर से हमारे केवल कष्ट आने लगते हैं, वो समय आता है छोड़ने का, अकेले होंगे हम, कोई मित्र काम नहीं आएगा। तो फिर क्या कोई सच्ची मित्रता नहीं है इस जगत में? है। इस जगत में दो ही सच्चे मित्र हैं हमारे, केवल दो, एक भगवान और दूसरे वो जो हमें भगवान तक ले जाते हैं, बस। और कोई सच्चे मित्र नहीं है इस जगत में। एक भगवान है, क्योंकि भगवान सबके सुहृद है। भगवान के लिए कहा गया है, बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है, सगुरु सपिता चापि समाता बांधवो पिस। वही गुरु है, सगुरु सपिता वही पिता है, चापि समाता बांधवो पिस, हमारे बंधु बांधव मित्र सब वही है। दरअसल हमने उनको त्याग दिया है। कभी कभी लोग हमारे इस वस्त्र को देखकर कहते हैं, प्रभु जी आपने बहुत बड़ा त्याग किया है, आप परिवार आपने स्वीकार नहीं किया, घर परिवार छोड़ दिया, बहुत बड़ा त्याग किया है। हम उनसे कहते हैं, हमसे बड़े त्यागी आप हैं। तो कहते हैं, कैसे? हम कहते हैं, हमने क्या छोड़ा है? अरे हमने घर छोड़ दिया, मान लीजिए थोड़ा बहुत धन छोड़ दिया। आपने तो सारे आनंद के स्रोत, सारे प्रेम के स्रोत, सारी चीजों के स्रोत कृष्ण को छोड़ दिया। आपसे बड़ा त्यागी और कौन हो सकता है? सही है ना? वो बड़े त्यागी हैं, और यही कारण है हमारे दुख का। भगवान आनंद और प्रेम के स्रोत हैं, जब हम उनको छोड़ देते हैं, उनसे विमुख हो जाते हैं, तो सच्चे आनंद को समझ नहीं पाते, सच्चे प्रेम को समझ नहीं पाते। प्रेम क्या है, आनंद क्या है? आप आनंद के सूत्र से अलग आ गए हैं, कृष्ण से अलग आ गए, जिनसे सारा प्रेम सारा आनंद निकल रहा है। कैसे समझोगे प्रेम को, कैसे समझोगे आनंद को? और इसीलिए हम इस जगत में उस आनंद को ढूंढते हैं। आत्मा का सच्चा आनंद भगवान की सेवा में, लेकिन हमें वो मिलता नहीं, इसीलिए हम अन्य स्थानों पर कुछ व्यक्तियों में, कुछ स्थितियों में, कुछ धन में, कुछ संपत्ति में उसी आनंद को ढूंढ रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि हम जिस आनंद को ढूंढ रहे हैं वो भक्ति का आनंद है, भगवान की भक्ति का आनंद। इसीलिए मित्रता करनी है तो भगवान से करें, क्योंकि भगवान की मित्रता में, भक्तों की मित्रता में स्वार्थ नहीं है। बाकी सारे संबंधों में स्वार्थ है, मित्रता में स्वार्थ है। भगवान के भक्त निस्वार्थ होते हैं। शिला प्रभुपाद जब अमेरिका गए कुछ लेने नहीं गए थे, उन्होंने केवल दिया, लोगों को दिया। शिला प्रभुपाद जब लंदन गए पहली बार, लोगों ने पूछा, स्वामी जी व्हाई हैव यू कम, व्हाट हैव यू कम हियर फॉर, आप यहां क्या लेने आए हैं, कुछ लेने आए हैं? प्रभुपाद ने कहा, मैं कुछ लेने नहीं आया हूं, आप लोग जब भारत से आते समय कुछ चीज छोड़कर आ गए थे, वहां की आध्यात्मिक संपत्ति उसको देने आया हूं आपको। पीछे पीछे भागे भागते हैं भक्त उस चीज को देने के लिए। तो प्रभुपाद ने कहा, मैं वो देने आया हूं आपको। ये भगवान की भक्ति है। इसलिए ऐसी भक्ति को हमें प्राप्त करना, ऐसे भक्तों का संग करना है। मित्रता के लिए कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस जगत में किसी चीज से आसक्त होता है, भगवान कपिल कहते हैं भागवत में, प्रसंगान अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु। सारे जितने विद्वान लोग हैं वो जानते हैं कि बंधन का कारण है आसक्ति। प्रसंगान अजरम पाशम, पाशम यानी बांध देता है। और देखिए, हम सब बंधे हुए हैं आसक्ति से इस जगत की, हर विद्वान व्यक्ति ये जानता है। लेकिन वो क्या कहते हैं, वही आसक्ति सएव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। अगर वही हमारी आसक्ति भक्तों में हो जाए, साधुषु कृतो, क्योंकि भक्त आपसे क्या चाहते हैं, कुछ नहीं। सएव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। तो एक हमारी मित्रता है जो बंधन लाती है, एक मित्रता है जो मोक्ष का द्वार खोलती है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो मोक्ष की ओर जाता है। इसीलिए सच्ची मित्रता भगवान से है। तो अब सुग्रीव ने मित्रता कर ली, भगवान ने वचन दे दिया कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन सुग्रीव ने सोचा कि भगवान को शायद वाली की शक्ति का पता नहीं है, बताता हूं मैं। भगवान ने कह तो दिया रामचंद्र जी ने कि मारेंगे वाली को, लेकिन जानते हैं क्या वाली की शक्ति क्या है? तो वाली की शक्ति बताने लगे। उन्होंने कहा कि वाली ने एक बहुत बड़े राक्षस जिसका नाम था दुंदुभी, एक बार उससे युद्ध किया और उसको मार दिया, उसको मारकर फेंका यहां पर, तो इसके छींटे मतंग ऋषि के आश्रम में पड़े खून के, और उन्होंने श्राप दे दिया यहां आना नहीं, नहीं तो सिर के टुकड़े हो जाएंगे, इसीलिए वाली यहां नहीं आता है। मैं चाहता हूं कि वो उसका कंकाल अभी भी पड़ा हुआ है, बड़े राक्षस का, दुंदुभी का, आप थोड़ा उसको धक्का मारकर दिखाइए। सुग्रीव कहते, देखिए भगवान की परीक्षा ले रहे हैं। भगवान ये जान गए कि श्री रामचंद्र जी मार सकते, लेकिन विश्वास नहीं था, क्योंकि वाली से बड़ी मार खाई थी सुग्रीव ने। तो सुग्रीव ने कहा, आप जरा ये इसको थोड़ा सा धक्का मार के 200 फीट, ज्यादा नहीं, 200 फीट दूर फेंक के दिखाइए, बस मैं मान जाऊंगा आपके अंदर शक्ति। भगवान ने कहा ठीक है। लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा आया। आप सोचिए, लक्ष्मण के सामने कोई रामचंद्र जी की परीक्षा ले रही है, आपके अंदर कितनी शक्ति है ये दिखाइए। तो लक्ष्मण को तो बहुत गुस्सा है, लेकिन रामचंद्र जी ने कहा चिंता मत करो। आप जानते हैं ना, लक्ष्मण हर समय छोटे भाई होने का नुकसान हुआ उन्हें। रामचंद्र जी हमेशा कहते थे बड़ा कौन है ना, सुन चुके ना कई बार। लक्ष्मण को जब भगवान को वनवास हुआ, लक्ष्मण पूरे क्रोध में, जला डालूंगा अयोध्या को, ये दशरथ स्त्री से आसक्त हो गया, अपने ही पिता के लिए कह रहे हैं, स्त्री से आसक्त हो गया, इसको मैं बंदी बना लूंगा और मार डालूंगा इसको, और अगर किसी ने विरोध किया पूरी अयोध्या में, पूरी अयोध्या को जला दूंगा। रामचंद्र जी ने कहा बड़ा कौन है, बोले आप चुपचाप बैठ जाए। सही खैर, चुपचाप बैठ जाए। भरत आ रहा है, लक्ष्मण तैयार हो गए अपना धनुष बाण लेकर, वन में पहुंच गए, भरत आ रहा है। रामचंद्र, क्या हुआ? अब भरत आ रहा है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, आप यहीं खड़े रहिए, अभी मैं मारकर आता हूं। अरे रामचंद्र जी ने कहा भरत ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता। अरे आप जानते नहीं, आप सबको अच्छा मानते हैं, मैं जानता हूं अपनी सेना क्यों लेकर आ रहा है। अगर आपसे मिलने आना था तो अकेला आता, पूरी सेना क्यों लाए, मारने के लिए आ रहा है, मैं छोड़ूंगा नहीं, चल दिए। लक्ष्मण से कौन बड़ा कौन है, लक्ष्मण ने कहा चुपचाप बैठ जाए, बैठना पड़ा। ऐसे कई बार हुआ, सीता देवी के समय में, बाद में जब सीता देवी को कहा कि जाओ सीता को वन में छोड़ा, लक्ष्मण बोले क्या गलती है सीता की, वन में छोड़ा है किस लिए। रामचंद्र की चिंता होने, बड़ा कौन है। तो इसी तरह यहां पर बड़ा गुस्सा आ रहा है, रामचंद्र जी की परीक्षा थी रामचंद्र जी, इसीलिए अगली बार बलराम जी बनकर आए थे, बोले बड़े आऊंगे, ये छोटे रहने में चिंता है, हर बार बोलते रहते छोटा कौन है बड़ा कौन है। तो अगली बार बड़े बनकर आए थे और वो कहते थे कृष्ण को बड़ा कौन है, तो कृष्ण कहते थे आप हैं, लेकिन मैं जो बोलता हूं उसको सुनो। होता बोता जो कृष्ण चाहते थे। जैसे जब अर्जुन सुभद्रा को उठाकर ले गए, हरण कर लिया, सारे योजना किसने बनाया था, कृष्ण ने पूरी योजना बनाकर दी थी, कब किस समय रथ भी सारा, क्योंकि अर्जुन तो ऐसे ही घूम रहे थे वनवासी, सब कुछ व्यवस्था करके दे दी ले जाना हो। और जब ले गए सारे लोग आकर सभा हो रही है, बलराम जी कृष्ण बड़े बड़े सारे महारथी यदुवंशी, कैसे ले गया हमारी बहन को उठाकर, हमारा अपमान कर दिया, छोड़ेंगे नहीं उसको, सब बहुत बोल। कृष्ण ऐसे बैठे थे शांत, सब बोल रहे बहुत बड़ा बड़ा, क्योंकि अगर कृष्ण बोलते तो बलराम जी कहते थे उनको बड़ा कौन है, तो इसलिए कृष्ण कुछ नहीं बोल रहे थे। तो सब सबने अपनी अपनी बात कह रही, छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे, ये करेंगे। बलराम जी देख रहे थे कृष्ण कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो बलराम जी ने बोला अच्छा ठीक है कृष्ण से पूछते हैं वो क्या है। तो कृष्ण से पूछा, अब कृष्ण तो बोलने में बड़े दक्ष हैं, तो उन्होंने बड़े प्रेम से समझाया कि देखो अर्जुन ही तो लेके गया है ना, हमें तो गर्व होना चाहिए, कोई ऐसे ही थोड़ी एरा गहरा उठाकर ले गया, अरे अर्जुन है वो तो, अच्छा है हमारा संबंध हो रहा है। और एक बात बताता हूं आपको, वो अर्जुन है, अगर हम हार गए उससे तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, इसलिए चुपचाप बैठे रहो। तो सबने कहा ये बात तो है, हमने सुना नहीं। तो खैर लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। तो अब रामचंद्र जी से सुग्रीव ने कहा आप इनको दे, तो रामचंद्र जी अपने पांव को जरा सा स्पर्श कराया, बस कोई ज्यादा मेहनत नहीं की, वो दस योजन दूर, दस योजन यानी कितने मील हो गया दूर जाकर गिरा। तो सुग्रीव ने देखा वाह, लेकिन जानते सुग्रीव ने क्या कहा, सुग्रीव ने कहा जब वाली ने मारा था ना तभी हट्टा कट्टा था। अभी तो बहुत दिन हो गए इसको मरे हुए, सूख गया है, हल्का हो गया है, तो आपने उसको मार दिया, ठीक है दूर कर दिया, तो अभी भी लेकिन मुझे विश्वास नहीं कि आप वाली को मार सकोगे, इसलिए सात साल के वृक्ष हैं, तो आप एक तीर चलाइए, वो एक वृक्ष को भेद कर दिखा दीजिए बस। अगर आपके तीर में इतनी शक्ति है कि वह साल के एक वृक्ष को भेद दे, तब मैं मानूंगा कि आपके अंदर सही में वाली को मारने की शक्ति। दरअसल वाली बहुत शक्तिशाली था। रामचंद्र जी ने बाद में एक प्रश्न किया था, जब सब रावण का वध हो गया, रामचंद्र जी वापस आ गए, राज्याभिषेक हो गया, तो ऋषि मुनियों की सभा में बैठे उन्होंने प्रश्न किया था कि क्या रावण को रोकने वाला कोई नहीं था, रावण इतना उत्पात कर रहा था सब जगह जाकर। तो उस समय उन्होंने बताया था कि नहीं, रावण को रोका गया था, एक व्यक्ति जिन्होंने रोका वो थे कार्तवीर अर्जुन और दूसरे थे वाली। वाली इतना शक्तिशाली था कि जब वो संध्या वंदन करता था तो बोलता नहीं था, शांत रहता था। वैसे बताते हैं कि वाली इतना शक्तिशाली था कि संध्या वंदन तीन समय पर तीन अलग अलग जगह पर भारत के अलग अलग कोने में अलग अलग समुद्रों में जाकर संध्या वंदन करके वापस आ जाता था। तो एक समय वो बैठा था संध्या वंदन कर रहा था, रावण पीछे से आया, क्योंकि रावण को पता था वाली बड़ा शक्तिशाली है, तो पीछे से आया, वाली देख रहा था लेकिन कुछ बोल नहीं सकता था। तो जैसे ही रावण आया आक्रमण करना चाहता था, वाली ने एक हाथ से उसको ऐसे बगल में दबा लिया और रावण का जो गला था ऐसे रावण लटका रह गया। और वाली अपना काम करता रहा, संध्या वंदन पूरा किया, उसके बाद तीनों समुद्र तीनों जगह पर गया, अलग अलग स्थानों पर भारत के कोनों में संध्या वंदन करने, और रावण ऐसे ही लटका हुआ था। और जब संध्या वंदन पूर्ण करके आकर फिर वाली बैठा, और तब उसने रावण से पूछा, बताओ क्या बात है। तो रावण ने तो शक्ति देख ली थी वाली की, चुनौती तो दे नहीं सकता था। रावण ने कहा आपसे मित्रता करनी है। उसने कहा ठीक है फिर छोड़ देता हूं। तो वाली बहुत शक्तिशाली था। तो रामचंद्र जी ने तीर चलाया और एक तीर से, सुग्रीव ने कहा था एक वृक्ष को आप मार के दिखाइए, रामचंद्र जी ने एक ही तीर से सातों वृक्ष को भेद दिया। एक तीर, पहले एक में दूसरे तीसरे से सातों को भेद कर पृथ्वी में गया, और पृथ्वी से निकलकर वापस भगवान के पास आ गया। जब ये आश्चर्य सुग्रीव ने देखा तो उसे विश्वास हो गया आप मार सकते हैं वाली को। तो वाली को मारना क्यों है तो इतिहास बताओ क्या हुआ था। तो सुग्रीव ने बताया कि दरअसल एक राक्षस था जिसका नाम था मायावी। तो एक समय उसने चुनौती दी, वाली और मैं दोनों गए उससे लड़ने, वाली लड़ रहे थे, अचानक वो एक गुफा में घुस गया। तो वाली ने कहा तुम यहीं खड़े रहो, मैं उसको मार कर आता हूं। वाली अंदर चले गए। एक वर्ष तक मैं इंतजार कर रहा था, न वाली बाहर आया न वो दानव बाहर आया। और फिर मुझे लगा कि शायद अब तो वाली की आवाज भी नहीं आ रही, मर गया होगा। तो मैंने उसको ढक दिया, पत्थर रख दिया और मैं वापस आ गया। तो जब वापस आया तो सब मंत्रियों ने कहा कि अब आपको राजा बनना चाहिए। तो मैं राजा बन गया, और हमने सोचा कि वो मर गया है, लेकिन वाली जीवित था। और जब वाली आया उसने देखा कि मैं राजा बन गया हूं, उसे लगा मैंने जान मूझ कर किया है, और इसीलिए वाली ने मुझे बहुत मेरा अपमान करके मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया, उसके भय से मैं यहां पर छुप कर हूं। और तो और उसने मेरी पत्नी को भी ले लिया, हरण कर लिया, उसको भी अपनी पत्नी बना लिया। तो रामचंद्र जी ने कहा ठीक है मैं उसको मारूंगा। अब बहुत सुंदर प्रसंग है। रामचंद्र जी कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ युद्ध करो और मैं पीछे से छुपकर उसको तीर मार दूंगा। तो वाली को जाकर ललकारा सुग्रीव ने। तो वाली सोचने लगा सुग्रीव को क्या हो गया, क्योंकि वाली तो जानता था सुग्रीव के पास शक्ति तो है नहीं। तो वाली ने युद्ध किया सुग्रीव से, और जब युद्ध हुआ तो अब सुग्रीव इंतजार कर रहा था कि भगवान मारे, भगवान मार ही नहीं रहे। पूरा युद्ध होने लगा, बहुत पिटाई होने लगी। तो सुग्रीव भागा वहां से, बहुत पिटकर आया, और फिर श्री रामचंद्र जी से कहने लगा कि अरे आप मुझे मरवाना ही चाहते तो खुद ही मार दें एक तीर से, वो वाली के हाथ में क्यों भेजा मरने के लिए आपने, और आपने तीर क्यों नहीं चलाया, आपने वचन दिया था मारेंगे। भगवान ने कहा देखो मैं मारना चाहता था लेकिन तुम दोनों एक जैसे दिखते हो, जुड़वा भाई थे वो लोग, और वैसे भी सारे बंदर एक ही तरह दिखते हैं। तो भगवान राम ने कहा तुम लोग दोनों एक तरह दिखते हो, मैं अगर गलती से तुम्हें तीर मार देता तो कितना बड़ा अपराध हो जाता, अन्याय हो जाता है, तो अधर्म मैं कर नहीं सकता था, इसलिए मैं नहीं मार पाया। तब दोबारा जाना। अब सुग्रीव सोचने लगा फिर से जाकर मार खानी वाली से, बोले दोबारा जाना, लेकिन इस बार लक्ष्मण को कहा कि इनको एक फूलों का माला पहना दो जिससे पता चले कि ये सुग्रीव है तो मैं मार सकूं। तो सुग्रीव ने जाके फिर से चुनौती दी वाली को। अब की बार वाली की पत्नी तारा ने कहा आप नहीं जाइए, रात्रि का समय था, उसने कहा आप नहीं जाइए क्योंकि ये सुग्रीव फिर से आया है। मैंने सुना है, अंगद मुझे बता रहा था कि वन में राम लक्ष्मण नाम के दो बहुत दिव्य पुरुष आए हुए हैं, मुझे लगता है कि ये लोग उसकी मदद कर रहे हैं, नहीं तो सुग्रीव में शक्ति नहीं है, सुग्रीव किसी के आश्रय पर आपसे चुनौती दे रहा है। देखिए हमें जानना चाहिए हमारे आश्रय कौन है। अर्जुन का आश्रय थे श्री कृष्ण, दुर्योधन का आश्रय थे शकुनी। जीवन में हमें अगर किसी का आश्रय लेना है, आश्रय मतलब जब भी कोई कष्ट होता था दुर्योधन शकुनी के पास भागता था, क्या करूं, और शकुनी कहते चिंता मत करो मार डालेंगे उन लोगों को, जला डालेंगे, जहर दे देंगे। और जब भी अर्जुन के जीवन में कोई कष्ट आता था अर्जुन कहां भागते थे, श्री कृष्ण के पास। इसलिए जीवन में हम किसका आश्रय लें ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम अगर आश्रय लेते हैं कुछ ऐसे लोगों का जैसे शकुनी, जो हमें जीवन के उद्देश्य से अलग ले जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। ये जान लीजिए कि शरीर को चले जाना, शरीर का चले जाना उतना बड़ा नुकसान नहीं है जितना इस जीवन में भगवान से दूर रहना। क्योंकि जब हम भगवान से दूर रहते हैं तो कई कई जन्मों तक हमें दूर रहना पड़ता है। शरीर तो क्या है, दूसरा मिल जाएगा, एक चला गया। लेकिन अगर भगवान से दूर हो गए तो सबसे बड़ी हिंसा जीव के लिए क्या है? हम लोग कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, तो अहिंसा का अर्थ क्या है? एक हिंसा होती है जो शरीर के लिए की जाती है, किसी को चाकू मार देना, बंदूक मार देना, ये एक हिंसा है। दूसरी हिंसा है मन के स्तर पर, जहां व्यक्ति का अपमान किया जाता है, किसी का अपमान कर दीजिए वो भी मृत्यु के समान है, ये भी हिंसा है। लेकिन इससे बड़ी हिंसा है जीव को भगवान से दूर रखना। इसीलिए जब अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है तो इसका अर्थ है कि हर जीव को भगवान के निकट लाने का प्रयास करना, यह सबसे बड़ी अहिंसा है। इसीलिए अगर हम उस धर्म का पालन करना चाहते हैं तो हमें सबको भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए, ये सही दृष्टि में अहिंसा है। तो फिर सुग्रीव के कोई तो आश्रय हैं, तारा कहने लगी, नहीं तो ये इतना बढ़ चढ़कर नहीं चुनौती देता, आप नहीं जाइए। लेकिन वाली ने सुना नहीं, तुम केवल ऐसे ही डरपोक हो, मैं जाकर अभी मार कर आता। वैसे वाली को एक सोने की चेन इंद्रदेव ने प्रदान की थी जिसके कारण उसकी मृत्यु नहीं होगी, जिसके कारण उसके अंदर बल बहुत था। तो अब वो चला गया युद्ध करने, अब दोनों का युद्ध होने लगा और इस समय श्री रामचंद्र जी ने तीर चला दिया। अब देखिए जिस समय तीर चलाया, वाली मर रहा था, वाली को तीर लगा, क्योंकि उसके गले में वो सोने की चेन थी इसलिए मर नहीं रहा था, लेकिन बहुत कष्ट हो रहा था। और उस समय वाली ने प्रश्न किया भगवान से, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम सबके मन में भी आ सकता है, भगवान ने छुप कर तीर क्यों चलाया? ये वाली का प्रश्न था। वाली ने बहुत कुछ कहा भगवान को, लेकिन प्रश्न मूलतः ये था कि मैं तो भाई से युद्ध कर रहा था, और जब कोई दो लोग युद्ध कर रहे हो तो तीसरे को चलाना ये तो अधर्म है, और आप तो धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिन्होंने कभी मर्यादा नहीं तोड़ी। श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहते हैं, पुरुषों में उत्तम दोनों हैं, लेकिन रामचंद्र जी के रूप में वो मर्यादा को प्रकट करते हैं, उन्होंने कभी मर्यादा नहीं तोड़ी, और कृष्ण के रूप में वो लीलाओं को प्रकट करते हैं। तो प्रश्न था वाली का, और भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि क्यों मैंने जो मारा है वो धर्म है। इस उत्तर को हम लोग कल सुनेंगे कि वाली के प्रश्न क्या थे, क्यों वाली को, वाली ने प्रश्न किया कि आपने कैसे मुझे मार दिया, और भगवान ने बहुत सुंदर उसका उत्तर दिया कि क्यों तुम्हें मारना ये धर्म है, और कैसे धर्म है इसको हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबके बड़े आभार।